ज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ सात तत्व के संदर्भ में विगत दिनों से अपनी चर्चा चल रही थी। जनागम का प्राण है ये सात तत्व। सात में से सातों ही जानने योग्य है, कोई कंसेशन नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहे कि सात तो बहुत हो गए, थोड़ा बहुत कुछ कंसेशन मिलेगा क्या? कहते हैं आपको यदि कंसेशन चाहिए तो आपको अनंत काल तो इंतजार करना पड़ेगा, और अनंत काल के बाद में भी सात ही तत्व पढ़ने पड़ेंगे, कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। माने सात तत्व ये इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है कि सात तत्वों के श्रद्धान हुए बिना आत्मानुभूति नहीं होती। जो भी जीव आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं वे सात तत्व का श्रद्धान अवश्य करें, और सात तत्व के श्रद्धान में सबसे पहला श्रद्धान है अपने आप का श्रद्धान। आपको भरोसा है कि आप हैं? कितने आश्चर्य की बात लगती है, मुझे मेरा अनुभव नहीं है, मैं हूँ इस बात पर मुझे भरोसा नहीं है। इस बात पर भरोसा कोई और दिलाए? कैसा लगता है आपको? मतलब डॉक्टर इस बात को सर्टिफाइड करें कि मैं हूँ तो मुझे अपने आप की स्वीकृति होगी? मुझे अपनी सत्ता के लिए, मुझे मेरे अस्तित्व के लिए, मैं हूँ मैं जिंदा हूँ इस बात के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? एक व्यक्ति दिखाने के लिए गया और तबीयत खराब थी और थोड़ा सा बेहोश हुआ, जो कुछ भी हुआ हो, और डॉक्टर ने उसको डेड घोषित कर दिया, मर गया। डॉक्टर ने उसको मरा हुआ घोषित कर दिया और डॉक्टर कहकर के चले गए, उसको ले जाने लगे, उसको और ले जाने लगे और बीच में उसको होश आ गया। तो जो लोग ले जा रहे थे उससे पूछा कि भैया कहाँ ले जा रहे हो, बाहर क्यों निकाल रहे हो मुझे? मैं तो बोले तू मर गया कि मैं तो जिंदा हूँ बोल रहा हूँ कि चुप रहे, तेरी मानेंगे कि इतना बड़ा डॉक्टर कह करके गया उसकी मानेंगे? अरे लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें आगम के प्रमाण की जरूरत नहीं है कि मैं जीवत्व शक्ति से जीता हूँ, मैं जी रहा हूँ ना, हाजरा हजूर खड़ा हूँ ना सामने, मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं जानता देखता हूँ, ये जीवत्व पना इसकी अनुभूति होती है कि नहीं कि मैं हूँ, ये अंदर से हुंकार निकलता है या नहीं, अस्तित्व है मेरा या मेरा अस्तित्व खो गया, विचेत होना चाहता है क्या? बाहरी व्यवहारिक क्रियाओं में बिल्कुल समझ लीजिए आप शराबी की जैसे मस्त हो जाना चाहता है उसमें, कभी कभी तो सोकर के सुखी मानता है, विचेत होकर के सुखी मानता है। हम कहते हैं तेरा ज्ञान ये तेरा अस्तित्व है, ये जीवत्व पना है, और जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ जड़ पना है तो अचेतन है, वो अजीव है। मैं जीव तत्व हूँ और जगत में जितने पदार्थ हैं इन सब से मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए वे सभी मेरे लिए अजीव तत्व हैं। मैं उनमें अपनापना करता हूँ जो मेरे अपने नहीं है, जो मेरे अपने कभी नहीं हुए उनमें अपनापन करके मैं दुखी होता रहता हूँ, और इसका नाम है आश्रव और बंध तत्व। आप निर्णय करें एक बार इस चीज के बारे में कि आप दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं? हमारे दुख का मूल कारण क्या है? बोलो, आप लिस्ट बनाइए एक, आपके दुख का मूल कारण क्या है आप बतलाइए, आपको परेशानी क्या क्या है। सच में आप थोड़ा सा अपने हृदय पर हाथ रख करके देखेंगे तो आप जितनी बातें बतला रहे हैं उन सब में वो निकलेगा जो मैं बताना चाहता हूँ। आप परेशानी बतलाइए, ट्रैफिक बहुत था, हम दुखी हो रहे हैं तो ट्रैफिक से दुखी हो रहे हैं। आप नक्की कीजिए एक बार, गर्मी बहुत ज्यादा है आप इस वजह से दुखी हो रहे हैं, इसका मतलब गर्मी दुखी करने में समर्थ है, यही निर्णय निकला ना। आप आज बहुत चले हैं तो चलने में, पैदल चलने में थकान महसूस हो रही है इसलिए आप दुखी हैं, माने आप दुखी थकान की वजह से हो रहे हैं। बच्चे कहना नहीं मानते, क्या करें पंडित जी साहब, सुनते ही नहीं है, ऐसे सामने जवाब देते हैं, हमारी से चलने ही नहीं देते। क्या आप इसलिए दुखी हैं? आप एक एक बात के बारे में नक्की करें, आप बतलाएं जरा मुझे कि आप दुखी किस वजह से हैं, फिर मैं बतलाऊंगा कि आपका दुख उन परिस्थितियों के कारण नहीं है, आपका दुख उनके प्रति होने वाले राग के कारण है, मोह के कारण है। वो मोह और राग जिसे टेक्निकल भाषा में कहें, हम जिनवाणी की भाषा में कहें तो आश्रम और बंध तत्व, वो आपके दुख के कारण है। आप देखिए आपको क्या लगता है। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि आज तो मंदिर आने में थोड़ी सी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत मिला था और इस ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशान है हम, आए दिन जाम लग जाता है, तो आप ट्रैफिक की वजह से परेशान नहीं है, वहां आपका राग बरसता है जल्दी पहुंचने का। आपके हृदय में ये राग बैठा हुआ है, लेट नहीं हो जाऊं, मैं जल्दी पहुंचूं, मैं समय से पहुंचूं, ये जो आपके अंदर राग है ना, ये राग आपके दुख का कारण है, वो ट्रैफिक आपके दुख का कारण नहीं है। बच्चे यदि आपको सामने जवाब देते हैं और आपको लगता है कि हम दुखी हैं, तो बच्चों का सामने जवाब देना दुख का कारण नहीं है, आपकी अपेक्षा कि बच्चे मेरे अनुसार चलें, ये आपके दुख का कारण है, माने आपका मोह आपके दुख का कारण है, बच्चे दुख का कारण नहीं है। हमारी अपेक्षा दुख का कारण है, हमारा राग दुख का कारण है। आप एक बार नक्की करने की कोशिश कीजिए, आप निर्णय कीजिए कि आप परेशान क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं। जीव तत्व को नहीं पहचाना और अजीव तत्व को नहीं पहचाना, जीव को अजीव और अजीव को जीव जान लिया, इससे खड़े हो गए ये आश्रम और बंध तत्व, ये मोह खड़ा हो गया। मोह दुख का घर है, किसी व्यक्ति के वियोग होने से दुखी नहीं होता। घर में परिवार में एक सदस्य चला गया हमारे बीच में से, तो लगता है ना कि अब तो दुख की घड़ी है। जितने लोग मिलने आते हैं, जितने लोग बोलने आते हैं, जितने लोग बात करने आते हैं, सब यही कह करके आते हैं कि आपकी दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। दुख की घड़ी में ये दुख का कारण है, किसी व्यक्ति का वियोग हो जाना दुख का कारण है, बतलाओ। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, इंडिया में रहते थे, और बड़े भाई और छोटे भाई दो भाई यहाँ रहते थे अमेरिका में। पिताजी का स्वर्गवास हो गया तो बड़े भाई छोटे भाई को फोन करके कहते हैं कि इस बार तू चला जा, फिर माँ की भी तबीयत कौन सी अच्छी है, अगली बार मैं चला जाऊंगा। समझ में आती है कुछ बात? फिर दुखी नहीं है क्यों? क्योंकि जहां मोह नहीं है वहां तकलीफ नहीं है, ये स्वार्थ है। दुख हो सकता है किसी के वियोग होने पर दुखी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी के वियोग होने पर दुखी रंच मात्र भी ना हो। तबीयत खराब थी पिताजी की बहुत ज्यादा, और इंडिया से फोन आया और यहां से दौड़ते हुए चले गए, तुरंत टिकट करवाया अर्जेंट में और यहां से चले गए इंडिया, और दो दिन तीन दिन रुके और तबीयत ठीक हो गई पिताजी की, वापस लौट करके आ गए। दोबारा फिर गए, दोबारा फिर फोन आया 6 महीने बाद में कि तबीयत बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाओ, और तुरंत फ्लाइट पकड़ करके वहां पहुंचे। संयोग की बात है, चांस की बात है, पिताजी की तबीयत फिर ठीक हो गई, वापस लौट करके आ गए। अब तीसरी बार फोन आया साल भर बाद में कि तबीयत खराब है, कहता मैं आता हूँ, होता तो कुछ है नहीं, तो तू किस लिए आता है ये बता, मर जाए इसलिए आता है, तेरे मन में क्या है? मैं तो इतनी दूर से टिकट करा करके आया और यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो तू तो चाहता क्या है कि कुछ हो जाए? ये चाहता है कि इनका स्वर्गवास हो जाए, मतलब हृदय पर हाथ रख करके सोचना, क्या ऐसी घटनाएं, क्या ऐसे लोग अपने को आसपास में दिखाई नहीं देते, तो क्या उनका वियोग हो जाना दुख का कारण है, क्या मौत हो जाना दुख का कारण है कि नहीं? जिसको जितना राग है, जिसको जितना मोह है, वो उतना दुखी है, और जिसका मोह जितना कम है उसका दुख उतना ही कम है। दुख का कारण परिस्थिति नहीं है, दुख का कारण घटनाएं नहीं है, दुख का कारण किसी का वियोग हो जाना नहीं है। मेरी जेब में पॉकेट जो थी उसमें वॉलेट रखा था और वो एकदम चोरी चला गया, जेब कट गई। तो बोलो आपका क्या कहना है, मैं दुखी होऊंगा या नहीं, बोलो आपको क्या लगता है? होना ही चाहिए। आपने ये नहीं पूछा कि उस वॉलेट में कितने डॉलर थे? वो तो खाली था वॉलेट, तो दो डॉलर रखे थे उसके अंदर, चले गए। बोलो दुखी होंगे कि नहीं? अरे ये क्या दो डॉलर के अंदर क्या सुनाते, कुछ नहीं होंगे दुखी। अच्छा दो डॉलर हो तो दुखी नहीं होते, अच्छा सौ डॉलर हो तो थोड़ा सा दुख होगा, और एक हजार डॉलर हो तो ऐसा होगा। जैसे जैसे डॉलर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे दुख बढ़ता जाएगा, ऐसा। इसका मतलब दुख का कारण डॉलर का जाना है या दुख का कारण उसके प्रति मोह है, या कितने ज्यादा गए हैं? जितने ज्यादा हैं उतना ज्यादा मोह है। और कदाचित ऐसा हो, क्या मान लीजिए कि थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर कोई लुटेरे मिल जाए आपको, और वो आपको दिखाए बंदूक, कहे निकाल जितना भी है तेरे पास में माल, चेक कर लो, जो हो तो ले लो, आप कुछ नहीं है मेरे पास तो। अब कितना दुख होता है आपको? अच्छा हुआ यार किसी काम के व्यक्ति के पास तो चला गया, जरूरतमंद तो ले गया, ये मुफ्त में लूट के ले जाते। भाई साहब आपके जो दुख का कारण है वो आपके दुख का कारण जेब में नहीं है, आपके दुख का कारण वॉलेट में नहीं है, आपके दुख का कारण किसी भी घटना में नहीं है, किसी भी पदार्थ में नहीं है, आपके दुख का कारण आपकी मान्यता में है, आपके अभिप्राय में है। आप अपना अभिप्राय बदलिए, आप अपना चिंतन बदलिए, आप अपनी सोच बदलिए। हम अपनी सोच नहीं बदलते हैं, क्रियाएं तो बदलना चाहते हैं लेकिन चिंतन नहीं बदलते हैं, सोच नहीं बदलते हैं, अभिप्राय नहीं बदलते हैं। जिनवाणी मोह को तोड़ने की बात करती है, मोह को तोड़िए, परिणामों को बदलने की चेष्टा कीजिए। हाँ लेकिन ध्यान रखना उन परिणामों को आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेगी, उन परिणामों को आप स्वयं बदलेंगे। अच्छी संगति में रह करके भी परिणाम न बदलो ये आपका दोष है, और बुरी संगति में रह करके भी न बिगड़ो ये आपकी अच्छाई है। रामायण के दो पात्र, एक विभीषण और एक केकई, सब जानते हैं आप लोग, विभीषण को जानते हैं सब और केकई को भी जानते हैं। विभीषण रावण का भाई था, केकई राम की मां थी, राम की मां थी केकई, है ना? तो केकई राम की मां थी, वो राम के राज्य में रहती थी, और विभीषण रावण का भाई था, वो रावण के राज्य में रहता था। लेकिन रावण के राज्य में रह करके भी विभीषण बिगड़ा नहीं, और राम के राज्य में रह करके भी केकई में सुधार हुआ नहीं। बोलो क्या करें, कौन किसको सुधारे? रावण के राज्य में था तो वहां तो बिगाड़ होना चाहिए था उसका, विभीषण का कुछ बिगाड़ नहीं। बिगड़े हुए के राज्य में रह करके भी, बुरे लोगों के राज्य में रह करके भी, जिनके परिणाम न बिगड़े उनके ऊपर अंतरंग श्रद्धान का बल है, वो नहीं बिगड़े तो नहीं बिगड़े। और राम राज्य में रह करके तो सब सुधरे हुए ही होंगे ना, बोलो। केकई के परिणामों को सुधारने में समर्थ नहीं हो सका राम राज्य। आपके परिणाम किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं करते, किसी जगह के ऊपर निर्भर नहीं करते, मंदिर में रह करके भी परिणाम बिगड़ सकते हैं और घर में रह करके भी परिणाम सुधर सकते हैं। मुख्य रूप से ये कहा जाता है स्थूलता से कि मंदिर परिणाम सुधारने का स्थान है और घर गृहस्थी में टीवी के सामने बैठोगे तो परिणाम बिगड़ेंगे, लेकिन फिर भी बिगड़ना और सुधरना ये न मंदिर के ऊपर निर्भर करता है न घर के ऊपर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आपके ऊपर। मेरी इस बात को सुनकर के स्वच्छंद नहीं हो जाना कि साहब अच्छा है फिर तो घर रह करके ही परिणाम सुधारेंगे, मंदिर आकर के परिणाम बिगड़ने से तो अच्छा है घर रहकर के परिणाम सुधारे जाएं, कि नहीं ऐसा नहीं है। मुख्यता से तो यही बात है कि मंदिर में आकर के ही परिणाम सुधरते हैं। दुख का कारण कौन है? राग दुख का कारण है, मोह दुख का घर है। हमने आज सरासर देखा है कि मोह ही एकमात्र ऐसा है जो मेरे दुखी होने का असली कारण है। सेठ जी दुकान पर बैठे थे, एकदम सूचना मिली, नौकर आया कि सेठ जी अभी घर की तरफ से आ रहा हूं, पप्पू गिर गया। बालकनी में खड़ा था और वहां खेलता हुआ उछल कूद करता हुआ नीचे गिर गया। और सेठ जी क्या करेंगे बोलो, सामने ग्राहक खड़े हुए हैं, दुकानदारी चल रही है, ग्राहक खड़े हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, क्या करेंगे बोलो। बेटा गिर गया ये सुनकर के सेठ जी का हाल क्या होगा? भागे तुरंत, ग्राहकों को रोक दिया, गल्ला खुला का खुला रह गया, 3 साल का बेटा था, भाग गए तुरंत घर पर। और जैसे ही घर पर पहुंचे और मालूम चला अपना नहीं पड़ोसी का गिरा है। अब क्या होगा बोलो? अब कितनी देर? हो सकता है थोड़ा सा दिखावे के कारण, लोक लाज के कारण थोड़ी देर वहां खड़े रहे, लेकिन इंतजार ये करेंगे कि मैं किस तरह से पतली गली से पीछे खिसक सकता हूँ निकलने के लिए, लोगों को बुरा नहीं लगे। किस बात का दुख था? अब दुख कहाँ चला गया? किस बात की टेंशन थी? क्यों दौड़ते हुए आए थे? और अब क्या हो गया आपको? आपका मोह आपको खींच करके ले आया। आपके दुख का कारण पूरे रास्ते दुकान से लेकर घर तक आए, पूरे रास्ते जहाँ ट्रैफिक दिखता है, जहाँ जाम दिखता है, जहाँ रेड लाइट दिखती है, वहाँ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, सांसें ऊपर नीचे हो जाती है कि जल्दी चला, जल्दी पहुंचना है वहाँ, बेटा गिर गया, क्या हालत होगी? अब क्या हो गया? जान में जान आ गई, ये कैसे आ गई? राग। ये राग क्या चीज है? इसका नाम है आश्रम। आश्रम माने राग, आश्रम माने मोह, आश्रम माने द्वेष, आश्रम माने काम क्रोधादि के परिणाम, उनका नाम है आश्रम। आश्रम माने विकारी भाव, और कुछ नहीं है आश्रम। इससे बढ़कर और आश्रम क्या चीज है? आश्रम कोई दूसरे में नहीं होता, आश्रम तो अपने में है और हमने ही आश्रम किया है। हमारे ही परिणामों से कर्म आते हैं, अपने ही परिणामों को संभालो, किसी और को संभालना भी नहीं है, किसी और को सुधारना भी नहीं है। हम दुनिया को सुधारना चाहते हैं, अपने परिणामों को नहीं सुधारना चाहते। आप अपने परिणामों को सुधारिए। मत देखिए दूसरों की ओर, मत आने दीजिए एक दूसरे में कटुता का भाव, कलुषता का भाव। सहज रहिए, ज्ञाता दृष्टा रहिए। मित्रता सबसे, घनिष्ठता किसी से नहीं। क्या कहा? सबसे मित्रता, सत्वेषु मैत्री। अमित गति आचार्य कहते हैं सामायिक पाठ में, सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परात्मम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा मम आत्मा विदधास्तुदेव। क्या सत्वेषु मैत्री, मैत्री भाव हो सब जीवों से, सबके प्रति मित्रता का भाव है, सहिष्णुता का भाव है। जो मिलते हैं हंस करके बोलते हैं, मुस्कुरा करके बोलते हैं, प्रेम से बात करते हैं, लेकिन घनिष्ठता, जितनी घनिष्ठता उतना दुख का कारण, जितनी घनिष्ठता उतनी पीड़ा, जितनी घनिष्ठता उतनी तकलीफ। बोलो ये घनिष्ठता आपकी तकलीफ का कारण है, क्योंकि जितनी घनिष्ठता होती है वहां फिर उतना ही ज्यादा पीड़ा करती है वो चीज। रोड पर क्योंकि देखिए पड़ोसी के बच्चे को आपने कुछ काम सौंपा और उसने काम नहीं किया, और आपने अपने बच्चे को कोई काम कहा और उसने नहीं किया, तो दोनों में क्या फर्क है? उसके नहीं करने पर सोचते हैं वो तो था ही ऐसा ही, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। बोलो, जहां अपनापन है, जहां राग होता है वहां द्वेष भी अधिक होता है। पता है द्वेष किसे कहते हैं? असंतुष्ट राग वृत्ति को द्वेष कहते हैं। असंतुष्ट राग द्वेष में बदल जाता है। जहां राग संतुष्ट नहीं होता, जहां राग की पूर्ति नहीं होती, जहां अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, आपका वो राग अपने आप द्वेष में बदल जाएगा। तो द्वेष दुख का कारण नहीं है, राग दुख का कारण है। सारा जगत द्वेष को दुख का कारण कहता है, सारा जगत क्रोध को दुख का कारण कहता है, सारा जगत छल कपट मायाचारी को दुख का कारण कहता है, लड़ाई झगड़े को दुख का कारण कहता है। लेकिन एकमात्र जैन दर्शन ऐसा है पूरे विश्व में जो ये कहता है कि द्वेष ही नहीं, द्वेष के मूल में राग बैठा हुआ है, वो दुख का मूल कारण है। बोलो, जैन दर्शन के अलावा दूसरे दर्शन वाले क्या कहेंगे? सब धर्म दर्शन वाले ये कहेंगे, देखो भाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो। सब क्या कहेंगे? झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, मिलजुल करके रहो। और जैन दर्शन क्या कहेगा? यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये। क्या कहा? यह राग आग दहे सदा, ये राग की आग है जो अंदर में निरंतर जलती रहती है, जलता रहता है अंदर में, पीड़ित रहता है, कष्ट पाता रहता है अपने ही राग के कारण। पड़ोसी से दुखी नहीं होता, अपने हस्बैंड से दुखी होता है, अपने वाइफ से दुखी होता है, पड़ोसी से दुखी नहीं होता, इनसे राग है ना। समझ में आ रही है बात? ये बात आप निश्चित समझ लीजिए, कोई व्यक्ति यदि आपसे नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो आपसे ज्यादा राग करता है, इसलिए नाराज हो रहा है। फार्मूला समझ में आया कुछ? क्या कहा? जो व्यक्ति आपसे ज्यादा नाराज होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे राग ज्यादा करता है, आपसे प्रेम ज्यादा करता है। बोलो, अब नाराज होना कि नहीं होना? राग दुख का कारण कह रहे हैं यहाँ सारे जनागम में। अप्रादुर्भाव है खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति, आत्मा में रागादिक भावों की उत्पत्ति होने का नाम हिंसा है, राग उत्पन्न होने का नाम हिंसा है। इतिहास इस बात का गवाह है। क्या
भगवान को वितराग क्यों कहते हैं?
वितराग कहते हैं अपन, वी द्वेष नहीं कहते भगवान को। हमारे भगवान वितराग है, वीत द्वेष ही कह देते हैं कि नहीं, वीत द्वेष कहते हैं तो आप राग को अपनाने की बात सोचते हैं। लेकिन वीत राग कहा है तो साहब द्वेष तो होगा। अरे जहां राग ही नहीं है वहां द्वेष का क्या काम होगा? मैं आपको बात बतला रहा था, इतिहास इस बात का गवाह है कि आज तक इतिहास में जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी झगड़े हुए हैं, बड़े से बड़े विवाद हुए हैं, उन विवादों के पीछे यदि कोई है तो तीन कारण कहे जाते हैं। आप जानते हैं क्या तीन कारण है? प्रणेश भाई, हाँ, जड़ जोरू और जमीन, सुने? ये तीन है। आज तक इतिहास में जितने भी युद्ध हुए, बड़े से बड़े युद्ध जड़ जोरू और जमीन के कारण हुए। राम रावण का युद्ध जोरू के कारण था, पत्नी के कारण था, सीता के कारण था, सीता नहीं होती तो युद्ध का क्या काम था? पत्नी के कारण युद्ध हुआ। और कौरव और पांडवों का युद्ध क्यों हुआ? ये साफ जाहिर है, जमीन के कारण हुआ था। और धन के कारण, पैसे के कारण होने वाले झगड़े विवाद قدم قدم پہ دکھتے ہیں. پیسے کے کارن تو بھائی بھائی جھگڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. دو پیسے کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے, دکان پر جھگڑا ہو جاتا ہے, گراہکوں سے جھگڑا ہو جاتا ہے, بزنس میں جھگڑا ہو جاتا ہے, پارٹنرز میں جھگڑا ہو جاتا ہے, آپس میں کس لیے پیسے کو لے کر کے من مٹاؤ ہو جاتا ہے. اچھا ان تینوں کی گہرائی میں جا کر کے دیکھو, جہاں ان تینوں یدھوں کی چرچا کی اور تینوں کارن بتلائے گئے, وہاں کون مول کارن؟ دویش, راگ مول کارن ہے بھائی صاحب. جب ہم رام راون کے بیچ میں یدھ کی بات کرتے ہیں تو رام چندر جی اور راون کے بیچ میں یدھ دویش کے کارن نہیں تھا, راگ کے کارن تھا. رام چندر جی کو تو سیتا کے پرتی راگ تھا ہی, کیونکہ ان کی پتنی تھی بھائی. تو راون کو بھی سیتا کے پرتی راگ ہی تھا. پرستری سیون کا اشبھ راگ تھا, پاپ روپ راگ تھا. راون کو بھی سیتا کے پرتی راگ ہے اور رام کو بھی سیتا کے پرتی راگ ہے, اور یہ دونوں کا راگ یہ جھگڑے کا, دشمنی کا کارن بنتا ہے, لڑائی کا کارن بنتا ہے. کوروں اور پانڈووں کی یدھ کی چرچا کر کے دیکھ لو آپ ذرا. کورو تو دشٹ تھے ہے نا, ان کو تو زمین جائیداد کے پرتی بہت موہ تھا, راگ تھا. ان کو تو نہیں ہوگا نا, کوروں کو تو نہیں تھا, پانڈووں کو تو نہیں تھا, بالکل تھا. پتا ہے ڈیل کیا ہوئی تھی دونوں میں, آپس میں کیا نکی ہوئی تھی؟ ایسی ڈیل فائنل ہوئی تھی, فائنل ہونے والی تھی. انہوں نے پرستاو رکھا, دریودھن نے, کوروں نے پرستاو رکھا کہ تم پانچ بھائی ہو اور چپ چاپ ہمارے کہنے سے چھوٹے چھوٹے سے پانچ گاؤں لے لو. کیا کہا؟ پانچ گاؤں لے لو اور شانتی سے رہو اس میں. برداشت نہیں تھا, پانچ گاؤں برداشت نہیں ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, رہنے کے لیے پانچ گاؤں چاہیے؟ ان کو تو پورا راجیہ چاہیے. ان کی تو دھن کے پرتی, راجیہ کے پرتی, زمین جائیداد کے پرتی آسکتی بہت ہے, لیکن کیا پانڈووں کی آسکتی بھی کم ہے کیا؟ کیا ایک مکان رہنے کے لیے پریاپت نہیں ہے؟ گاؤں چاہیے رہنے کے لیے. زمین کے پرتی راگ تھا ان کا بھی, جو ان کے لڑائی کا کارن بنا. دھن کے پرتی راگ آپس میں لڑائی کا کارن بنتا ہے, یہ بات تو کس سے چھپی ہوئی ہے؟ شاستر یہی بات کہتے ہیں, راگ یہ آسرو بھاو ہے, راگ یہ دکھ کا کارن ہے, موہ یہ دکھ کا کارن ہے, اس کے علاوہ دوسرا کوئی دکھ کا کارن نہیں ہے. جو جو موہ کا لیول بڑھتا چلا جاتا ہے, کیوں کہ وہ دکھ بڑھتا چلا جاتا ہے, اور جیسے جیسے موہ کا لیول کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے دکھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ایک مارمک بات دھیان رکھنا, پریوار کو انڈیا میں چھوڑ کر کے یدی آپ یہاں آ گئے ہیں, اور آپ یدی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا تو موہ ان کے پرتی کم ہو گیا ہے اس لیے دکھ کم ہوگا, تو کہتے ایک ویکتی کے پرتی موہ کم ہوا, انیہ کے پرتی موہ بڑا ہوا ہے, اسے موہ کو کم ہونا نہیں کہتے. ارے درشن موہ, اس سارے موہ کا باپ بیٹھا ہے اندر میں, جس کا نام متیاسو ہے, جس کا نام الٹی مانتا ہے. پھر دو چار دن کے لیے کہیں سنت کے آشرم میں چلا جائیں, دو چار دن کے لیے, تو پھر ایسے لگنے لگتا ہے جیسے میرے کو تو بہت شانتی مل رہی ہے, میرا تو موہ بالکل کم ہو گیا, کتنا آنند ملتا ہے یہاں سب. ایسا لگنے لگتا ہے جیسے بہت ہم تو ورکت ہو گئے ہیں. کیوں, موہ کم ہوا؟ تھوڑا بہت, کچھ کم نہیں ہوا. دروازے پر بیٹھا ہوا ہے, جب یہاں آشرم سے نکل کر کے واپس باہر جائے گا تو برابر انتظار کر رہا ہے, وہ موہ برابر بیٹھ جائے گا آپ کی جیب میں آ کر کے, آپ کے ہردے میں آ کر کے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, جب آپ یہاں جین سینٹر میں آتے ہیں تو آپ کا متیاسو پرینام, موہ پرینام دروازے پر بیٹھا بیٹھا گھبرانے لگتا ہے, یار یہ اندر چلا گیا یہ آدمی, اب تو میرے کو انٹری نہیں ہے لگتا ہے ایسا. اور باتیں بھی پنڈت جی سات تتو کی کرتے ہیں, سمیہ درشن کی باتیں کرتے ہیں, اب متیاسو کو کہاں انٹری ملے گی؟ اب تو مشکل ہے, اب تو کوئی دوسرا ٹھکانا دیکھنا پڑے گا. موہ ایسا وچار کرنے لگتا ہے اندر میں, ایسا وچار کرنے لگتا ہے. لیکن جب ہم اٹھ کر کے باہر نکلتے ہیں تو وہ گرم سے سینہ پھلا لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے وشواس تھا اپنے آپ کے اوپر کہ تو کتنا بھی ستسنگ میں چلے جا لیکن میرا ساتھ تو چھوڑے گا نہیں. کہ متھیا تو ایسا ہمارے ماتھے پر اناجی کالین سنسکار بیٹھے ہوئے ہیں, بہت لمبے جمے ہوئے ہیں. رشیوں میں جو سکھ بدھی ہے نا, یہ آسانی سے ٹوٹتی نہیں ہے. اور کبھی کداچت تھوڑا بہت پنچیندری وشیوں سے ورکت ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو دھرماتما سمجھنے لگتے ہیں, بہت بڑا دھرم کر لیا. بولو سپتاہ میں سات دن یدی ہم مندر درشن کرنے کے لیے آ جائیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے ہم نے تو گڑھ جیت لیا. یہاں رہ کر کے امریکہ میں رہتے کون کرتا ہوگا صاحب سات دن درشن مندر آ کر کے, ہم ساتوں دن مندر آ کر کے درشن کرتے ہیں, ہم جیسا دھرماتما کون ہوگا. واہ رے واہ, مندر آ گیا اپنے آپ کو دھرماتما سمجھ رہا ہے. دس پندرہ منٹ ایک آدھ گھنٹہ مندر میں آ کر کے بھگوان کے سامنے ماتھا ٹیک دیا اور دھرماتما ہو گیا, اور 23 گھنٹے جو دکان میں تیری میری کرتا رہتا ہے, پاپ کے کام کرتا رہتا ہے, تو پاپی نہیں ہے. ہم کس سے اپنے آپ کو دھرماتما سمجھ رہے ہیں. بولی تھوڑی دیر پڑھ لیا, تھوڑی دیر سمجھ لیا, تھوڑا بہت جمی گند کا تیاگ کر دیا, تھوڑی بہت دیر کے لیے, کچھ سمے کے لیے, کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہم نے پنچیندری وشے بھوگوں سے ورکتی لے لی, کچھ سنیم لے لیا, تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم بہت بڑے دھرماتما ہو گئے. اس بھول میں مت رہنا. انت بار کیا ہے یہ سب, انت بار, انت بار کیا ہے. نہیں کرنے یوگی یدی کچھ کام رہا ہے تو بھید وگیان نہیں ہوا, سمیک درشن کی پراپتی نہیں ہوئی, آتما کا انوبھو نہیں ہوا, اتیندری آنند رس کا رسا سوادن نہیں ہوا. یدی نہیں ہوا تو باقی سب کام انت بار کیا ہے. اس لیول تک پہنچا ہے کہ تن پر ایک کپڑا بھی نہیں رکھا, پیچھے اور کمنڈل اتنے اکٹھے کیے کہ اشٹ پاہڑ میں کند کند سوامی یہ کہتے ہیں کہ اتیت بھووں کے پیچھے اور کمنڈل اکٹھے کیے جائیں تو سمیرو پروت کے برابر ڈھیر لگ جائے. اتنی بار پیچھے کمنڈل اکٹھے کیے ہیں ہم نے, دھارن کیے ہیں ہم نے, اتنی بار منی بنے ہیں, اتنی بار سادھو بنے ہیں, اتنی بار سادھک بنے ہیں. مون گاتا کی باتیں کہتا ہوں, اپنے گھر کی بات نہیں کہتا کچھ بھی. مول گاتھا میں ایسے شبد دیے, اتنی بار تو نے پیچھے کمنڈل دھارن کیے, کیا ہو گیا, کون سا تیر مار لیا, تھوڑا سا تیاگ کر کے سمجھتے ہیں دھرماتما ہو گئے. یہ جین دھرم یہ کوئی اپورو دھرم ہے, یہ باہر کا دھرم نہیں ہے, اندر کا دھرم ہے. سارا جگت جین دھرم کو باہر کا دھرم کہتا ہے, اور جین دھرم کو گہرائی سے دیکھنے پر پتا لگتا ہے جین دھرم باہر کا دھرم نہیں ہے, اندر کا دھرم ہے. پوری دنیا میں جین دھرم اس روپ میں پرسدھ ہے کہ جینیوں کا تیاگ دیکھو, جینیوں کی تپسیا دیکھو, جینیوں کا آچرن دیکھو, جینیوں کا سداچار دیکھو, جینیوں کی نیتکتا, جینیوں کی ایمانداری. ارے پرانے سمے میں جینی لوگ جا کر کے کورٹ میں جا کر کے کوئی گواہی دیتے تھے تو اس کی گواہی کے بیس پر فیصلے ہو جایا کرتے تھے. بولو جینیوں کی اتنی دھاک ہوا کرتی تھی, آج بھی کم نہیں ہے. مجھے دھیان ہے ایک پرسنگ گوپال لال جی بریا مورینا سے ممبئی جا رہے تھے, ٹرین میں سفر کر رہے تھے, اور ٹرین میں سفر کرتے کرتے وہ تھے, پتنی تھی اور بیٹا تھا ایک ساتھ میں, اور انہوں نے بیٹے کا ٹکٹ نہیں لیا تھا. ٹرین میں سفر کرتے کرتے جس دن سفر کر رہے تھے اس دن بیٹے کا برتھ ڈے تھا, جنم دن تھا, انہیں دھیان نہیں تھا. پتنی نے کہا کہ آج تو اس کا جنم دن ہے. کیوں, 3 سال کا ہو گیا یہ. وہ اسٹیشن پر جہاں اترے ممبئی اسٹیشن پر, وہاں جا کر کے بیٹے کا ٹکٹ لیا انہوں نے, اترنے کے بعد ٹکٹ لیا انہوں نے. آپ سوچ سکتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, آپ تو پوری یاترا کر کے آ گئے, آپ سے کسی نے نہیں پوچھا, اور آج ہی تو ہوا ہے 3 سال کا, 3 سال کے بچے تک کا تو ٹکٹ نہیں لگتا ہے, آج ہی تو ہوا ہے. ہم تو کئی مہینے چھپا جائیں, ارے 3 سال بھی زیادہ ہو گئے ہوں تو چھپا لیں. بولو آپ, ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں ایک بار. کداچت کوئی وکرتی کا بھاؤ آتا ہو تو ترنت نکالیں اسے, نہیں نہیں یہ غلط کام نہیں ہوگا, ہم سے یہ غلط کام نہیں ہوگا. بالکل ایمانداری کے مارگ پر چلنا, بالکل سچائی کے مارگ پر چلنا. یہ جینیوں کی دھاک ہوا کرتی تھی کسی سمے میں, ایسی کیسے ہوتے تھے جین, ہم کیسے ہیں. بولو, لیکن ये धर्म नहीं है, ये समझ लेना। हिंदू आपको त्याग की दृष्टि से देखेंगे, मुसलमान आपको त्याग की दृष्टि से देखेंगे, क्रिश्चियन लोग आपको ये कहेंगे आप जैन हैं, आप उपवास करते हैं, आपके पर्यूषण चल रहे हैं, वो आपका तो त्याग बहुत जबरदस्त है। वो आपको भाई आचरण की अपेक्षा से देखेंगे, वो कहेंगे आप क्यों विहार करते हो, वो आप रात्रि भोजन नहीं करते हो, आप तो आलू प्याज जमीकंद नहीं खाते होंगे, हाँ साहब नहीं खाते। वो आपको आचरण की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना इस आचरण की दृष्टि से अपने आप को धर्मात्मा मत समझने लगना, क्योंकि आगम ये कहता है ये सामान्य सदाचार है, इतना तो होना ही चाहिए, इसमें क्या दम है, इतना भी नहीं किया तो पात्र नहीं है, ये तो जनवाणी सुनने की पात्रता है। रात्रि भोजन करो यदि आप, ये जनवाणी आपके हृदय में उतरेगी नहीं, सुन लेना कितनी भी, 2 साल सुनो या 5 साल सुनो, 25 साल तक सुनते रहो, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग नहीं होगा, आलू प्याज का त्याग नहीं होगा, जमीकंद का त्याग नहीं होगा, मध्य मांस मधु का ठिकाना नहीं होगा, तो जनवाणी अंदर में उतरेगी नहीं। लेकिन यदि इन सब का त्याग कर दिया हो तो अपने आप को धर्मात्मा मत समझने लगना। समझ में आ रही है कुछ बात क्या कह रहा हूं? नहीं किया हो तो पहले त्याग करना, और त्याग किया हो तो उसमें संतुष्ट मत होना, उससे अपने आप को धर्मात्मा मत समझना, क्योंकि इसका नाम धर्म नहीं है, ये आश्रव है, इसका नाम आश्रव है। ये सदाचार कौन से तत्व में जाता है बोलो? पुण्य भाव है, ये आश्रव तत्व है। आश्रव अच्छा है क्या बोलो? आश्रव भला है कि नहीं है? कर्म है आश्रव, दुख के कारण है भाई साहब आश्रव। आश्रव को भला कैसे कह सकते हैं? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आश्रव यदि आपका शत्रु है, आश्रव यदि आपका दुश्मन है, आश्रव यदि बुरा है, आश्रव यदि छोड़ने योग्य है, तो कौन सा आश्रव छोड़ने योग्य है? पाप आश्रव या पुण्य आश्रव? दोनों छोड़ने योग्य है। बोलो, आश्रम है ना, बंटवारा नहीं हो बिल्कुल भी, एक को भला और एक को बुरा, ऐसे दो काम नहीं करने, दोनों ही छोड़ने योग्य है, दोनों ही त्याग करने योग्य है। आपको भला जरूर लगेगा, देखने में आपको भला लगेगा, बात करने में आपको अच्छा लगेगा, किंतु अच्छा नहीं है वो, पुण्य भला नहीं है वो, पुण्य अटकाने वाला है आपको भाई साहब, अटकने के चांस बहुत है। देखने में अच्छा लगेगा, वेश अच्छा बनाया हुआ है, सुंदर दिखाई दे रहा है, मन ललचाएगा, अटकने का मन करेगा, ये पुण्य शीतल छाव की तरह है, छाया आपको रोकने की कोशिश करेगी जो मंजिल तक नहीं पहुंचने देगी। रोड पर चलते हुए इस गर्मी में घूमने जाओ डिज्नी पार्क, चलते चलते आपको जहाँ पेड़ दिखता है, जहाँ थोड़ी सी छाया दिखाई देती है, आपका मन करता है कि मैं यहाँ रुक जाऊं। इस गर्मी के समय में आपका मन रुकने का करता है छाया देख करके, ये पुण्य भी उसी छाया के समान है, उस शीतल छाया के समान है, अटकना नहीं। आप यदि इसमें अटके, जितनी देर अटके रहे मंजिल से उतना दूर है, तो सही धर्म किसका नाम है, सच्चा धर्म किसका नाम? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, क्या कहा? जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम, विष्णु बुद्ध हरि जिसके नाम, राग त्याग पहुंचूं निज धाम, आकुलता का फिर क्या काम। बोलो क्या नाम है परमात्मा का? कौन भगवान, किसको भगवान माने अपन? राम कहो, बुद्ध कहो, जिन कहो, महावीर कहो, बुद्ध कहो, शिव कहो, शंकर कहो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। नाम कुछ भी रखो ना आप, शर्त क्या है? राग त्याग। जहाँ राग होगा वो खतरनाक है। कहता भक्तों के प्रति राग होना तो अच्छा है, भक्तों के प्रति राग होना अच्छा नहीं है क्या? कि भक्तों के प्रति राग अच्छा है तो जो भक्त नहीं है, हम ये पूछते हैं कि वो भक्त नहीं है तो उनको पैदा क्यों किए? कोई जो भक्त नहीं है वो कभी भक्त होता हुआ दिखाई देता है, जो भक्त होता है वो आपसे दूर होता हुआ दिखाई देता है। ये तो बदलती स्थितियां हैं, आप क्या करोगे? राग जहाँ है वहाँ दुख है। अरे भक्तों के प्रति भी जिसके हृदय में राग होगा वो व्यक्ति दुखी होगा। चलो मैं भगवान का भक्त मान लिया, झूठा भक्त नहीं सच्चा भक्त भगवान का, मेरे से कोई गलती हो गई, मेरे से कोई अपराध हो गया, अब भगवान का सच्चा भक्त हूँ, भगवान बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? सच्चा भक्त हूँ बोलो, झूठे भक्त की बात नहीं कर रहा, दिल से भगवान के पास ना आकर के माफी मांग रहा हूँ मैं, भगवान बहुत बड़ी गलती हो गई, झगड़ा हो गया था भाई से, गलती मेरी ही थी, मैंने बहुत सुनाया उसको और खूब गाली गलौज की, जो कुछ भी किया किया आ गया भगवान के सामने। सच्चा भक्त हूँ भगवान का, भगवान मुझे माफ करेंगे कि नहीं? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्योंकि झगड़ा तो करके आया अपने भाई से और माफी मांगता मेरे से, अरे वाह बड़ा होशियार है, झगड़ा जिससे करके आया माफी तो उससे मांगनी चाहिए ना, दुश्मनी जिससे हुई है, जिस मित्र से द्वेष भाव हुआ है माफी तो उससे मांगनी चाहिए। देखो दूध पानी की मित्रता सुनी है आपने? दूध पानी की मित्रता नहीं सुनी आपने? अरे दूध पानी की मित्रता तो घनिष्ठ है, बहुत इतने घनिष्ठ हैं, उनकी मित्रता तो आपस में जगत में प्रसिद्ध है, उनकी मित्रता दूध और पानी की। पानी दूध में मिला और दूध में समा गया, एक मेक हो गया, उसमें समा गया, समर्पित हो गया। पानी का जब ऐसा समर्पण देखा तो दूध ने पता है क्या कहा? कि तेरे समर्पण को देख करके मैं अभिभूत हूँ, तो चिंता मत कर, आज मैंने तेरा ऐसा समर्पण देखा है, जिस भाव मैं दिखूंगा उसी भाव तुझे दिखवाऊंगा। देखो आप, ये देखो आपस में मित्रता का कमाल है। ये आगे देखो आप, हुआ क्या हुआ? ऐसा कि पानी ने भी ये सोचा कि ये तुम यदि मित्रता निभाता है तो मैं भी मित्रता निभाने में कमी नहीं छोड़ूंगा। जब दूध को बेचा गया और घर ले जाकर के आंच पर चढ़ाया गया और उसे उबाला जाने लगा, तो पानी ने कहा कि अब मेरी बारी है, तो चिंता मत कर, जब तक मेरा अस्तित्व है मैं तेरे ऊपर आंच तक नहीं आने दूंगा। और पानी उफनने लगा, पानी उबलने लगा और अपने मित्र को ऊपर उफनता हुआ देखकर दूध से भी रहा नहीं गया और दूध ने कहा कि नहीं, तू यदि मेरे लिए जान दे सकता है तो चिंता मत कर, तेरे ऊपर जो ये संकट आ रहा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उफन करके अग्नि के ऊपर गिरने लगा उसे बुझाने के लिए, और फिर दो बूंद जरा पानी के छींटे देकर के देखो उस दूध के ऊपर, अपने मित्र को अपने पास में आता हुआ देख करके फिर शांत हो गया। कैसी घनिष्ठता है, कैसी मित्रता है उन दोनों में। लेकिन ध्यान रखना, इतनी घनिष्ठता और इतनी मित्रता होने के बावजूद भी यदि दो बूंद नींबू की खटास उसमें मिल जाए फिर क्या होगा? दूध का दूध, पानी का पानी, दोनों अलग अलग, दो बूंद खटास की, भाई साहब ये जो रिलेशन है आपस में, आपकी व्यवहार है, आपकी संबंध है, इन संबंधों के बीच में यदि दो बूंद थोड़ी सी कटुता के यदि आ गए हैं तो समझ लीजिए फिर दो पाठ होने में देर नहीं लगेगी। सावधान रहिए, कलुषता से दूर रहिए, कटुता से दूर रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जितना राग होगा उतनी ही ज्यादा पीड़ा होगी, اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوگی، اتنا ہی زیادہ دکھ ہوگا آپ کو. پہلے ہی ساودھان، میں نے واقعہ کہا تھا بیچ میں، مترتا سب سے گھنشتتا نہیں. بس ٹھیک ہے، ہمارا ویوہار بہت اچھا ہے، ہمارا ریلیشن بہت اچھا ہے. بس یہ ایسا، یدی آپ کا سمبندھ ہے جب جیسے ہیں اچھے ہیں، بس ملتے ہیں تو بہت مستی سے، نہیں ملتے تو ٹھیک ہے، جب جس سے ملتے ہیں مستی سے ملتے ہیں، ہنس کر کے بات کرتے ہیں، مسکرا کر کے رہتے ہیں، مسکراتے ہوئے جیتے ہیں. ایسے رہو آپ دنیا میں، یدی آپ کو رہنا ہے جیون میں، یدی آپ کو رہنا ہے تو یہ جیون جینے کی کلا ہے. موہ کو کم کر کے جیوں گے تو ڈھنگ سے جی پاؤں گے. ہے کوئی اپائے موہ کو کم کرنے کا؟ پریوار جن، سگے سمبندی، رشتے دار لوگ، یہ سب موہ کو بڑھانے والے ہیں، یہ سب بڑھانے والے ہیں. اور سادھرمی لوگ یہ موہ کو گھٹانے والے ہیں. اس لیے جتنا بن پڑے اتنا پریوار والوں کو چھوڑ کر سادھرمیوں اور ستسنگ میں اپنا کال بتانا. ہاں اس سے بڑھ کر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب اپنے پریوار کے لوگ ہی ستسنگ میں شامل ہو جائیں، اس سے بڑھ کر تو کچھ بات ہو ہی نہیں سکتی. تو سگے سمبندی، باہری لوگ، موہ بڑھانے والے اور ستسنگ میں سادھرمی لوگ، یہ موہ کو گھٹانے والے. کنتو موہ کے گھٹنے سے بھی پریوجن کی سدھی نہیں ہوگی. اپنا ترکالی درو گیاک بھگوان آتما وہ موہ کو نشانے والا ہے، گھٹانے والا نہیں. آپ نکی کرو موہ کو گھٹانا ہے کہ موہ کا ناش کرنا ہے. بولو کیا کرنا ہے؟ گھٹے گا تو زیادہ لمبے سمے تک گھٹا نہیں رہے گا، پھر بڑھ جائے گا. تھوڑا سا موہ گھٹا ہے ہمارا اور ہم ہو گئے سنتوشت. تھوڑا سا کم ہوا، تھوڑا مندر آنے لگے، تھوڑا سا بات سمجھنے لگے، وستو سوروپ سمجھنے لگے، منہ تھوڑا سا گھٹنے لگا تو ہمیں ایسا لگنے لگا کہ بہت اچھا کام ہو گیا، ہم اس میں سنتوشت ہو گئے. بولے تم سنتوشت ہو گئے، اٹک گئے بیٹا، ہاں یہ نہیں ملے گی. اسنتوشتی چاہیے، اسنتوش چاہیے، نہیں اور آگے بڑھنا ہے، نہیں اور آگے بڑھنا ہے. سداچار میں سنتوشت نہیں ہونا سب سے بڑا گھاتک کارن ہوتا ہے سداچار. پاپ اتنا بادھک نہیں ہے، پاپ اور پنیہ دونوں آشرم ہے نا، پاپ اتنا بادھک نہیں ہے جتنا پنیہ بادھک ہے. پاپ اتنا برا نہیں ہے جتنا پنیہ برا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھو آپ لوگوں کو ہنسی آتی ہے یہ بات سن کر کے، لیکن بات سچی ہے بھائی. کیا کہیں، پاپ اتنا برا ہے ہی نہیں. اس لیے برا نہیں ہے کہ وہ پاپ تو ہر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے، سب چھوڑنا چاہتے ہیں. آپ ہردے سے پاپ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ دل سے پاپ چھوڑنا چاہتے ہیں، آپ بدلنا چاہتے ہیں. آپ کے خود کے من میں بھاؤ آتا ہے کہ نہیں ہم نے زیادہ نہیں اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں کیا میں نے. اور پنیہ، پنیہ میں سب سے بڑا ویک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پنیہ کرتے کرتے اپنے آپ کو دھرماتما سمجھنے لگتے ہیں، سب سے بڑا مائنس پوائنٹ ہے. یہ پنیہ بھیج بدل کر کے آتا ہے، دھرماتما کا بھیج بنا کر کے آتا ہے، اور آپ کو پنیہ میں دھرم پنے کا بھرم ہو جاتا ہے. ہمیں ایسے لگنے لگتا ہے میں دھرماتما ہو گیا، اس نے بھیج بنایا، دھرماتما کا لگنے لگا، آپ کو پنیہ میں دھرم لگنے لگا، آپ کو وہ اچھا لگنے لگا، آپ کو وہ بھلا لگنے لگا، دنیا کے لوگ آپ کو دھرماتما کہنے لگے، لوگ آپ کی پرشنسا کرنے لگے، اور آپ پرشنسا میں سنتوشت ہونے لگے. واہ واہ آج مزہ آنے لگا، اچھا لگنے لگا. یہ لکھا ہے یہاں ادھر ایسا نیچے، یہ سب موہ ممتو بھاو اہم بھاو کشائے بھاو چار کشائے ماں سکھ، یہ پر ستا، یہ نیچے لاسٹ پوائنٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ میں چار کشائے ماں سکھ، سبھی اچھا لگنے لگا، مان کشائے کا پوشن ہونے لگا، لوگ تعریف کرنے لگے، مجھے مزہ آنے لگا، بہت اچھا ہو گیا. اٹک رہا ہے تو پنیہ میں اٹک رہا ہے، لوگ تجھے کہہ رہے ہیں دھرماتما، اور تو بھی سمجھ رہا ہے دھرماتما. میں سویم چھوڑ سکتا ہے، خود کو بھی دھرماتما دکھ رہا ہے، لوگ بھی دھرماتما کہہ رہے ہیں. میں سویم چھوڑ سکتا ہے، نہ چھوڑنے کا اپدیش دینے والا کوئی ملتا ہے دنیا میں؟ کون ملے گا جو یہ کہے گا کہ یہ کام غلط ہے، ستسنگ میں بیٹھنا غلط ہے؟ یہ کون کہے گا؟ کتنا بڑا کلیجہ چاہیے یہ بات کہنے کے لیے. یہ بات ان کے لیے نہیں ہے جو آتے ہی نہیں ہیں, یہ بات ان کے لیے ہے جو روزانہ ستسنگ میں آتے ہیں. کیا کیوں آتے ہو؟ اسی لیے آتے ہیں کہ یہاں آئیں گے تو یہ بات سننے کو ملے گی کہ اس میں دھرم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کچھ بات؟ بات بڑی گمبھیر ہے بھائی. پاپ کی تلنا میں بھلی پنیہ کو کتنا بھی بھلا کہا جائے, پاپ کی تلنا میں کتنا بھی کہو پنیہ بھلا ہے, اچھا ہے, اس سے تو اچھا ہے, اس سے تو اچھا ہے, لوگ اسی طرح کی باتیں کریں گے. ارے کس سے اچھا ہے, کیا بھلا ہے, سوکشمتا میں جا کر کے دیکھ, تھوڑی سی گہرائی میں جا کر کے. میں کہتا ہوں کبھی کبھی ایسا پوچھ لیتا ہوں میں سبھاؤں میں, آپ یہاں سے اپنے کسی فرینڈ کے یہاں, کسی ریلیٹو کے یہاں پارٹی میں جا رہے ہیں, شادی میں جا رہے ہیں, پردیس رہتا ہے, دوسرے گاؤں رہتا ہے, باہر گاؤں رہتا ہے, آپ نے اپنا بریف کیس جمایا, سامان جمایا, سب تیاری کی, سوٹ کیس لیے, تیار ہوئے, اپنے ٹرین پکڑی, فلائٹ پکڑی, جو کچھ بھی تھا, آپ وہاں جانے لگے. راستے میں آپ کا سامان چوری ہو گیا, آپ کو کیسا لگے گا؟ جو سوٹ کیس آپ لے کر کے گئے, جو پیکنگ آپ کر کے لے کر کے گئے, اس میں آپ کے سارے پیسے تھے, سارے کپڑے تھے, سوٹ تھا, سب کچھ تھا. راستے میں آپ کا سامان چوری ہو گیا, اب آپ کی کیا حالت ہوگی وہاں پہنچنے کے بعد؟ کتنی بڑی مصیبت ہو جاتی ہے نا. جو کپڑے لے کر گیا وہ کپڑے ہی نہیں ہیں, بتاؤ کیا ہوگا؟ تو بہت بڑی مصیبت ہو گئی, ایسا لگتا ہے نا آپ کو. اچھا یہاں سے جاتے سمے ایسا کام ہو گیا تو بہت سنکٹ ہے, کم سے کم آتے سمے ہوتا کیا تو اپن اپنے گھر تو آ رہے تھے. آتے سمے ہوتا تو گھر آ کر کے اور سوٹ بھی تو ہیں, المیرا میں لگے ہوئے ہیں, کیا فرق پڑ گیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں, جاتے سمے سوٹ کیس چوری ہو وہ اچھا ہے کہ آتے سمے چوری ہو وہ اچھا ہے؟ کیوں, کیا ہوا؟ صرف جاتے سمے پرابلم پتا ہے وہ کتنی پرابلم ہوگی؟ جاتے سمے یدی چوری ہو گیا تو وہاں آپ کے پاس میں پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, اور مصیبت تو یہ ہو گئی کہ ہم جاتے سمے نائٹ سوٹ پہن کر کے اور چلے گئے, سوٹ نہیں پہن کر کے گئے, نائٹ سوٹ پہن کر کے گئے سفر میں, کیونکہ سامان تھا نا ساتھ میں, اب وہاں جا کر کے چینج کرنا ہی تھا اپنے کو, اب چینج کرنے کے لیے کچھ کہا رہا نہیں. اب واپس آتے سمے چوری ہوتا تو کوئی دقت نہیں تھی, دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ آپ کو یہ آپشن دیا جائے تو آپ دونوں میں سے کس کو پسند کریں گے؟ کیا پسند ہے آپ کو, آتے سمے؟ نہیں نہیں, دونوں ہی پسند نہیں ہے. کس کو پسند ہوگا؟ دونوں ہی پسند نہیں ہے. اچھا چلو دونوں پسند نہیں, صحیح بات ہے, آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں, دونوں پسند نہیں ہے, دونوں پسند ہونے بھی نہیں چاہیے تھے. اپنا سامان چوری ہو جائے یہ کسے پسند ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ چوری ہونا تو آپ کی قسمت میں لکھا ہے. اب بتاؤ, اب کداچت چور نے آپ کو یہ آفر دے دیا کہ بول, جاتے سمے سامان چوری ہو یا آتے سمے چوراؤں, بول. چوری تو ہوگا, اب تو کیا چاہتا ہے یہ بتا, تو آپ کیا چنیں گے؟ آتے سمے. کیوں؟ اور اس کی تلنا میں تو بہت اچھا ہے, اس کی تلنا میں بہت اچھا ہے, سامان چوری ہو جانا اچھا ہے, آپ اسے بھلا مانتے ہیں. چلو کوئی بات نہیں, واپس لوٹتے سمے, آتے سمے آپ کا سوٹ کیس چوری ہو گیا, اب آپ گھر میں آ کر کے پارٹی دیتے ہیں کہ نہیں فرینڈس کو بلا کر کے؟ اچھا ہوا یار جاتے سمے نہیں ہوا, آتے سمے ہوا, بہت خوشی کی بات ہے, آپ خوشی مناتے ہیں. بس یہ پنیہ ایسا ہی ہے, دیکھنے میں اچھا لگتا ہے, اس کی تلنا میں یہ بھلا دکھائی دے رہا ہے, لیکن بھلائی رنچ ماتر بھی نہیں ہے, رنچ ماتر بھی بھلائی نہیں ہے اس پنیہ میں. ایک بچہ
کچھ بھی کنڈیشن آئے گی اس میں باپ پنیہ تو کرتے آئے گی, بیکاز راگ اینڈ دیش,
صحیح بات ہے,
راگ اور دیش آئیں گے تو پاپ اور پنیہ بھی آئیں گے. और बाबा को दुनिया में नीच कहते हैं.
हाँ या 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 व्हाई नॉट. देखिए सुनिए मेरी बात, दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे पुण्य रूप परिस्थिति हो या पाप रूप परिस्थिति हो, मैं परिस्थितियों से भिन्न एक तत्व हूँ, क्योंकि पुण्य और पाप आश्रव तत्व है और मैं जीव तत्व हूँ. यू हैव टू डिसाइड, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सात तत्वों में से कौन से तत्व हैं. पहले ये नक्की करो, जीव तत्व है, अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है, बंध तत्व है, संवर तत्व है, निर्जरा तत्व है कि मोक्ष तत्व है. फर्स्ट ऑफ ऑल जीव, जीव तत्व है. जीव तत्व के लक्षण क्या है? मैं ज्ञाननहार, मैं जानने देखने वाला, मैं सुख दुख का अनुभव करने वाला, ये जीव का लक्षण है. और ये जो आकुलता हो रही है पुण्य और पाप के नाम पर, ये जो कम ज्यादा हो रहा है, ये जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है हमारा, ये कौन सा तत्व है? ये मैं नहीं हूँ, ये मेरे विभाव भाव हैं, ये मेरे विरोधी भाव हैं, ये मेरे विरोधी तत्व हैं, ये दुश्मन तत्व हैं जो मैं बन करके मेरे साथ में मिल गए हैं, स्वभाव का घात करने वाले हैं.
नहीं,
वो समझ गए तो हो गया बस.
नहीं, नहीं.
बस समझ गए फिर क्या दे रहे हैं? जब नहीं समझो तो समझाऊ, अब समझ गए तो फिर क्या समझाऊ?
बोले कि जब नीच में रहने का, तो नीच के
इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर अभ्यास चाहिए, निरंतरता चाहिए, कंटिन्यूटी में. यदि हम रेगुलर इस बात को सुने तो बात हृदय में बैठती है. एक दिन सुनने से नहीं, एक दिन हमने सुन लिया, बात हमारे को जच गई, और फिर लेकिन वो तो वही घर गृहस्थी, वही बिजनेस, वही जॉब, वही सब राग रंग विषय कषाय पंचेंद्रिय भोग आनंद उसी में आता हुआ दिखाई देता है. तो रोजाना रोजाना चोट पड़े हमारे मान्यता के ऊपर तो पार पड़ती है. एक दिन में नहीं होता, डेली प्रैक्टिस चाहिए. एक दिन में नहीं होता है. मुझे चलता है ना खेल दिखाने वाला, रस्सी पर चलता है, ये चल सकता है तो मैं नहीं चल सकता हूँ. रोज प्रैक्टिस करेगा. क्या बात कर रहे हो आप? चल मत लेना देखा देखी. क्या करता है? कुछ भी नहीं, हाथ में लकड़ी रखता है और पैर बढ़ाता जाता है, ऐसे ऐसे करता जाता है. हम भी कर लेंगे, उसमें क्या हो गया? देख देख करके सीख लेंगे आप. ये स्विमिंग करते हैं, ये कैसे करते हैं बोलो? अच्छा, ड्राइविंग करने वाले क्या करते हैं? ये ऐसे पकड़ लेंगे, बैठे रहते हैं बस. कितना आसान है भाई साहब, कई दिनों का अभ्यास चाहिए. ऐसा नहीं चलेगा कि आज आप स्टीयरिंग पर बैठे और लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए पहली बार में. दुर्घटना निश्चित है, दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. जितना अभ्यास होगा, अभ्यास कैसे करें? सतगुरु के सानिध्य में, जिनवाणी के सानिध्य में. जिनवाणी यदि ये कह रही है कि आश्रव और बंध दुख के कारण है, पुण्य और पाप दोनों एक समान है, दोनों में कदाचित अपन थोड़ा बहुत अंतर कर सकते हैं, पाप की तुलना में पुण्य भला दिखाई दे रहे, लेकिन अपने स्वभाव की तुलना में वो अच्छा नहीं है, ये बात जिनवाणी कह रही है, तो अकेला सुनना नहीं, अकेला एक्सेप्ट भी नहीं करना उस बात को, उस बात में चिंतन करना, मंथन करना, घोलन करना, फिर किसी निर्णय पर पहुंचेंगे आप, तब जो स्वीकृति होगी वो सच्ची स्वीकृति होगी. ऐसे नहीं कि हमने सुना और हमने मान लिया, हमने स्वीकार कर लिया, हमने, ऐसे नहीं चलेगा. बहुत मेहनत लगती है भाई साहब. हमने कह दिया घर गृहस्थी में सुख नहीं है और आप छोड़ करके निकल गए तो हमारा गला पकड़ लेंगे आपके घर से आकर के, कहेंगे किसका सुनने के लिए गए थे? अरे जयपुर से आए थे. कहाँ है वो? बुलाओ उसको. भैया हम भी सावधान रहना चाहते हैं. जो करो निर्णय करके करना, निर्णय आपका है. आपका निर्णय माने हम तो साधारण से व्यक्ति है, देखो हमारी पोस्ट बड़ी नहीं है, पोस्ट तो आपकी बड़ी है. आपने भले माइक लगा रखे हो, दो दो तीन तीन लगा रखे हैं, एक बार यहाँ है, लेकिन तो भी सच बात यही है कि आपका पद ज्यादा बड़ा है मेरी तुलना में. हो सकता है शायद आपका दिल इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, लेकिन मैं सिद्ध कर सकता हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ इस बात को मुकुंद भाई कि आपका पद बड़ा है. उम्र में तो आप बड़े हैं ही, नो डाउट क्या, लेकिन पद भी आपका बड़ा है। पद जानते हैं ना आप, स्टेटस, पोस्ट, लेवल। नहीं ऐसा मत करो प्रदीप जी, आप तो आप हैं, हम सब श्रोता इतने लोग, आप तो वक्ता हैं। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हमारा काम वकीलों जैसा है। वकील, एडवोकेट, किसी भी बात को जिसको हम कहते हैं उसे सिद्ध करते हैं, उसे प्रूफ करते हैं, हम तर्क देते हैं, युक्ति से बात करते हैं, न्याय से बात करते हैं, उसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, उसके लिए पुरानी घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं, उसके लिए ये लॉ की बुक्स है हमारी, इन बुक्स को पढ़ते हैं, इनके रेफरेंस देते हैं कि फलाने ग्रंथ में उस जगह पर उस दाता ने ये लिखा है, इसके आधार पर ये बात सिद्ध होती है। हम अनेक प्रमाण देकर, अनेक शास्त्रों को पढ़कर, अनेक तर्क और युक्ति के माध्यम से किसी पॉइंट को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। हम ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे, यहाँ वकील होने के नाते, एडवोकेट होने के नाते, हम इस बात को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि पुण्य और पाप दोनों आश्रव हैं, आश्रव दुख का कारण है, इसलिए पुण्य भी आपके दुख का कारण है, इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। किंतु आप लोग हैं मजिस्ट्रेट, निर्णय आपको करना है, फैसला किसे करना है, जज कौन है, बोलो। मैं फैसला नहीं कर सकता महेंद्र भाई, मैं नहीं कर सकता हूं फैसला, फैसला आपको करना है कि ये जो वकील बोलता है ये सच बोलता है कि नहीं, इस वकील ने जो तर्क दिए हैं ये तर्क सच्चे हैं या नहीं, ये जिस न्याय नीति से बात करता है वो सच्ची है या नहीं, इसने जो पुराने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, प्रथमानुयोग के हवाले प्रस्तुत किए हैं, वो सब कच्चे हैं या नहीं, ये जो लॉ के आधार पर बोलता है, जो गाथाएं प्रस्तुत करता है उन गाथाओं में ऐसा लिखा है या नहीं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको निर्णय करना है कि बात सच्ची है या झूठी है। फैसला आपके हाथ में, फैसला करने वाले का पद बड़ा होता है कि तर्क देने वाले वकील का पद बड़ा होता है। आपके यहाँ अमेरिका में मुझे नहीं मालूम किसका पद बड़ा है, बोलो। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है भाई साहब। न गुरुदेव कांजी स्वामी बतलाने वाले हैं, न श्रीमद जी बतलाने वाले हैं, न उमा स्वामी आचार्य आकर के बतलाएंगे, न कुंदकुंद आचार्य आकर के बतलाएंगे, न हेमचंद्र आचार्य उतर करके आएंगे, न हरिभद्र आचार्य उतर करके आएंगे। आपको निर्णय करना है, आपका निर्णय, ये व्यक्तिगत निर्णय है, ये आप निर्णय करेंगे वो आपके काम आएगा, हम जो निर्णय करेंगे वो हमारे काम आएगा, बोलो। सबका अपना अपना, हस्बैंड ने निर्णय कर लिया तो वाइफ के काम आएगा ना, भाई इन्होंने निर्णय कर लिया हमारे उसी के हिसाब से चलना है, फिर धोखे में मत रहना। रामचंद्र जी निर्णय करके मोक्ष में चले गए और सीता देखती रह गई, विकल्प भी आया उसको बहुत, और स्वर्ग से आई भी ध्यान करते हुए पर उपसर्ग करने के लिए। पता है आपको घटना, सीता ने जब दीक्षा ले ली पृथ्वीमती आरिका के पास में, हिंदू संप्रदाय ये कहता है कि पृथ्वी में समा गई, और जैन मान्यता ये है कि पृथ्वीमती माता जी के सानिध्य में दीक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, आरिका बन गई, संन्यास ले लिया, त्याग कर दिया, पंचम वनस्थानवर्ती हो गई, व्रत धारण किए, स्वर्ग में चली गई। सीता स्वर्ग में चले गई, रामचंद्र जी ने पीछे से कुछ राजपाट किया कुछ समय, और फिर उसके बाद में दीक्षा ले ली, मुनि बन गई, साधना करने लगे, तपस्या करने लगे। सीता का राग भाव जागृत हुआ, अब देखना आप, वो जो राग भाव जागृत हुआ तो वो लौट करके आई, ये ध्यान कर रहे हैं, उनको हिलाती है, ए जी सुनो जी, क्या क्या ध्यान कर रहे हो, ऐसे इतना कठोर ध्यान मत करो, अभी तो थोड़ा कम करो, स्वर्ग में आ जाओ, फिर अगले भाव में साथ में करेंगे ध्यान, साथ में मोक्ष चलेंगे। वो ध्यान से विचलित नहीं हुए, एक दो बार हुआ वे ध्यान से विचलित नहीं हुए, उपसर्ग करना चालू कर दिया उनको ध्यान से विचलित करने के लिए। रामचंद्र जी के ऊपर उपसर्ग करने वालों में यदि किसी का नाम है तो प्रथमानुयोग उठा करके देखना, वो उसका नाम है जो 16वें स्वर्ग में इंद्र बन गई, सीता, सीता का जीव सीतेंद्र, वो उपसर्ग करता है उनके ऊपर। असंतुष्ट राग, राग पहले तो क्या होता है, आप प्रेम से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, अपनापन है ना, मधुरता से बोलते हैं, फिर राग का पोषण नहीं होता है, फिर आवाज में थोड़ी सी तेजी आती है, फिर भी बात नहीं मानी जाती है सामने से, फिर थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ता है फिर भी बच्चा नहीं मानता है, और तीन बार कही फिर वो सामने जवाब देने लगता है तो वॉल्यूम इतना बढ़ जाता है कि पड़ोसी देखते हैं क्या हो रहा है क्या? फिर हाथ चलने लगते हैं, ये क्या हो गया, ये असंतुष्ट राग द्वेष में बदल जाता है। जहां राग का पोषण नहीं होता है वहां द्वेष पैदा हो जाता है, समझ में आ रही है बात, माने द्वेष असंतुष्ट राग की ही दूसरा रूप है और कुछ नहीं है। इसलिए आचार्यों ने द्वेष को नहीं पकड़ा, राग को पकड़ा है। मूल में बैठ करके बात करते हैं, गहराई में जाकर के बात करते हैं, यही तो सूक्ष्मता है संतों की, इन वीतरागी संतों की यही सूक्ष्मता है। इस गहराई में जाकर के बात करते हैं वो, भाई साहब मूल कारण को पकड़ो, दुख का मूल कारण क्या है, इसको सही पहचानने का नाम सम्यक दर्शन है, इसी पहचानने को सम्यक दर्शन कहते हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवें अध्याय में निश्चयवासी प्रकरण अंतिम पंक्तियों में पता है क्या लिखा उन्होंने सम्यक दर्शन की परिभाषा, हम सब आत्मार्थी हैं, हम सब सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, हम लोग सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबका एम ये हमारी लाइफ में मोक्ष मार्ग प्रकट हो, सिद्ध दशा अर्थात मुक्ति, और उस मुक्ति का मार्ग माने सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र, वो हमारी लाइफ में प्रकट हो। मैं आपसे पूछता हूँ, जिस सम्यक दर्शन को आप प्रकट करना चाहते हैं, वो सम्यक दर्शन चीज क्या है, वो सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा, बोलो। आप कह देंगे साहब तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, आप क्या बोलते हैं, शास्त्रों में लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, अब सामने बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता है आपके तत्व तत्व नहीं समझ में आते हमारे को, आप सरल भाषा में समझाओ, अब सम्यक दर्शन को कैसे समझाओ बिना तत्व के, बोलो। ऐसे लोग मिल जाते हैं कई, वो ये कहते हैं हमारे तत्व नहीं समझ में आते, देखो पंडित जी आप जब आते हो तत्व की बात लेकर के बैठ जाते हो, अब तत्व से कुछ काम वाम तो, तत्व किस काम आएंगे बताओ हमारे को, तत्व से कुछ काम तो होना नहीं है, तो हमें ऐसे लगता है कि तत्व काम नहीं, आप तो कुछ और बतलाओ, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो करना है, देखो सम्यक दर्शन तो करना है, क्योंकि इतना तो हमें पता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा और सम्यक चारित्र होगा, वो मोक्ष का मार्ग है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है भाई, ओके, ये तो आप जानते हो, तो कैसे समझाएं, तो टोडरमल जी ने वहां समझाने की कोशिश की, रागादि मिटाने का श्रद्धान उसका नाम सम्यक दर्शन है, रागादि मिटाने का जानना उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और जिस प्रकार से राग द्वेष आदि मिटे वो आचरण ही सम्यक चारित्र है, इससे सरल और क्या कहें, रागादि मिटाने के श्रद्धा, आपको ये भरोसा है कि ये रागादिक मिटाने हैं, बस इस भरोसे का नाम सम्यक दर्शन है। और मैं यदि और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं इस चीज को, और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ करके और सरलता से कहूं, तो जो उन्होंने लिखा है रागादि मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, मैं अपनी भाषा में कह सकता हूं दुख मिटाने का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। रागादि माने दुख, रागादि माने कष्ट, रागादि माने पीड़ा, रागादि माने तकलीफ। आप क्यों दुखी हैं? राग से दुखी हैं आप, दुखी हैं मोह से दुखी हैं आप, दुखी हैं कषाय से दुखी हैं। तो फिर श्रद्धा किस चीज की, कि दुख मिटाना है, मुझे दुख मिटाना है। आपके अंदर में यदि इस बात का पक्का श्रद्धान है, हो गया सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इससे सरल और बात क्या कहेंगे, सही है कि नहीं सम्यक दर्शन। हर आत्मा दुखी है, सब दुखी है, मुझे मालूम है, यहाँ भले मुस्कुराते हो आप, क्या अंदर से कितने दुखी है, अंदर से कितनी पीड़ा है, हमारी हम ही जानते हैं, और कभी कभी निकल भी जाता है। जब मैं कहता हूँ आप तो बहुत मजे में हो साहब, आपके क्या है, अरे नहीं पंडित जी हमारी हम ही जानते हैं। आप देखो हमारी हम जानते हैं, आपको लगता है ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी भी परेशानियां कम नहीं है बिजनेस में, बहुत झंझटे हैं, दिन रात खेलना पड़ता है यहाँ दुकान पर बैठ करके, चेक होती है रोजाना, बहुत मगजमारी है, आसान नहीं है। मैं ये कहूँ साहब आप लोगों के तो बहुत मजे हैं साहब, अमेरिका में रहते हो, क्या ठाट है आपके तो। अरे नहीं पंडित जी, देखने में ही भला है, उतनी खर्चे हैं, उतनी ही परेशानियां हैं, हमारी हम ही जानते हैं, हमारी हम ही भुगत रहे हैं। बोलो, हर आदमी दुखी है कि नहीं, और दुखी क्यों नहीं हो? या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता, एक नियम है इस संसार में कोई भी जीव सुखी नजर नहीं आता है, सब दुखी हैं। आप यदि दुखी हैं तो दुख मिटाना चाहते हैं या नहीं? कि चाहते हैं, बस इसी का नाम सम्यक दर्शन है, एक श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन ध्यान रखना, एक पॉइंट बीच में जोड़ना जरूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। आप दुख मिटाना चाहते हैं और दुख मिटाने के नाम पर दरिया में जाकर के स्नान करते हैं और फिर सोचते हैं कि आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। पंडित जी ने कही थी, दुख मिटाने का श्रद्धांत तो सम्यक दर्शन है। बोलो, ऐसा नहीं, टेम्परेरी दुख मिटाने का श्रद्धांत नहीं, परमानेंट यदि दुख मिटाने का श्रद्धांत होगा तो हम कहते हैं कि अब सम्यक दर्शन होगा। पक्का भरोसा है कि नहीं, मिटाना चाहता है कि नहीं? बोल, सोचो जरा, अपने हृदय में हाथ रख करके सोचो, अंतरंग में झांक करके सोचो, जो बातें कहते हैं वो बातें जचती है या नहीं? हम जो बात कहते हैं वो बात आपको सच्ची लगती है या नहीं? वो बात आपको अनुभव में आती है या नहीं? सब अनुभव की बातें हैं। मैं आप लोगों के सामने कोई शास्त्रों की बातें नहीं करता, बातें सब शास्त्रों की है, घबराना नहीं। फिर आप कहने लग जाओ शास्त्र की बातें नहीं करते, बुलाया है आपको, बातें सब शास्त्रों में लिखी है, लेकिन जैसे मैं आपको बतला रहा हूं उस तरह से नहीं लिखी है। मैं आपको सिंपल करके बतलाता हूं, मैं इस तरह से बतलाने की कोशिश करता हूं कि आपके हृदय में उतर जाए, लेकिन मात्र सुनने तक सीमित मत रखना, इसके बारे में चिंतन करना, इसके बारे में विचार करना। ये खुराक है आत्मा की। यहां से जाकर के जब बाहर जाकर के गाड़ी में बैठो या यहां से उठो, ऐसे पल्ले झाड़ करके मत उठना। क्या तो सब यही झाड़ करके, मंदिर की चीज मंदिर में, बचपन से सीख मिली है हमें तो, बचपन से सीख मिली है बेटा, कहीं भी जाओ तो वहां की चीज वापस घर नहीं लेकर के आना। तो मंदिर की चीज घर नहीं लेकर के आते पंडित जी, आप कितना भी सिखाओ, बचपन से संस्कार है, पक्के संस्कार है, यही छोड़ के जाएंगे और आपकी चीज आपको लौटा करके जाएंगे। और जब मैं खड़ा होता हूँ यहाँ तो सब आते हैं मुझे लौटाने के लिए। बोलो, ऐसा मत करना भाई, हाथ में रखना, चिंतन करना, गाड़ी में बैठे बैठे चिंतन करना। मैंने ऐसी चीज बतला दी आपको, ये चिंतन करना, आप गाड़ी में बैठे बैठे भी धर्म कर सकते हो, घर में बैठे बैठे भी धर्म कर सकते हो, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए, पूजा करने में धर्म यदि मैं बतलाता तो आपको कम से कम वीक में यदि एक दिन पूजन करनी है तो 3 घंटा निकालना पड़ेगा। 60-70 किलोमीटर दूर दूर से तो आते हैं आप लोग, अब इतने इतने दूर से आते हैं तो जाने आने में इतना टाइम लगता है, एकाध पूजन भी आकर के करो वीकेंड में तो कम से कम 3 घंटा चाहिए आपको। और यहाँ तो टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं आपको ऐसा धर्म बतलाना चाहता हूँ कि टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं हो और धर्म भी हो जाए, समय बिल्कुल न लगे और धर्म का धर्म। बोलो, ऐसा धर्म करना है कि नहीं? कैसे होगा ऐसा धर्म कि जो बात यहाँ कही जाए वो बात यहाँ से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर आपके चिंतन में चले, आपके उपयोग में चले, सोते उठते बैठते। क्योंकि मैंने आज आपको पोस्ट दिए एक, ध्यान रखना, निभाना है आपको। यहाँ तो खुश हो गए आप मजिस्ट्रेट की पोस्ट लेकर के, लेकिन भाई साहब जिम्मेदारी है, फैसला तो करना पड़ेगा, निर्णय तो करना पड़ेगा। निर्णय नहीं किया, नहीं साहब मैं मजिस्ट्रेट हूँ। अरे भैया, तू मजिस्ट्रेट है तो फैसला तो सुना, जो बातें कही है आप निर्णय करें, करें अवश्य करें निर्णय, और निर्णय करेंगे तो इसी जगह पर पहुंचेंगे। कौन सी जगह पर? ये राग दुख का कारण है, ये आश्रव दुख के कारण है, ये आश्रव बंध के कारण है। पाप बुरा था, पुण्य भी बुराई है, दोनों ही बुरे हैं, दोनों में से एक भी भला नहीं है, दोनों में से एक भी भला नहीं है, तो पुण्य छोड़ दें। ये गलत फहमी नहीं, ये गलत काम नहीं करना, वो सदाचार है, वो करने योग्य है, वो छोड़ने योग्य नहीं है। मंदिर आना छोड़ने योग्य नहीं है, स्वाध्याय करना छोड़ने योग्य नहीं है, और छोड़ना ही है तो पहले दुकान छोड़, बाद में मंदिर आना छोड़ना। क्या विषय कषाय तो छूटते नहीं है क्या? और यहाँ जब हमने पुण्य को हे बतलाया तो कहता है आज तो मजा आया, आज तो बहुत मजा आया। पंडित जी ने ऐसी बात कह दी, आज तो हमारे दिल की बात कह दी, रोजाना पीछे पड़े रहते थे सत्संग में जाओ सत्संग में जाओ, आज उन्होंने सच्ची बात बतला दी कि इसमें धर्म नहीं होता। तो फिर किसमें होता है? टीवी के चैनल घुमाने में? फिर किसमें धर्म होता है ये बताओ? अरे भैया इसमें नहीं होता तो उसमें तो होता ही नहीं है। वो विषय कषाय पंचेंद्रिय भोगों की बात तो बहुत दूर रह गई, उसमें तो होता ही नहीं है, इसमें भी नहीं होता, इसका मतलब धर्म इससे भी ऊपर बढ़कर के कोई चीज है। वो जो ऊपर बढ़कर के जिसे धर्म कहा गया है उसका नाम है निश्चय धर्म, उसका नाम है वस्तु स्वरूप, उसका नाम है चेतन की पहचान, उसका नाम है निज में निज बुद्धि, उसका नाम है अपने में अपनापन। तन में अपनापन नहीं, अपने में अपनापन होगा तो काम चलेगा। अनादिकाल से यही काम नहीं किया, सब काम किया है, सब काम किया है। खाना छोड़ा, पीना छोड़ा, उपवास किए, व्रत किए, माला जपी, व्रत प्रतिमाली उपवास करो या मंदिर में डेरा डालो, सब किए है हमने ये काम, सब किया। मंदिर बनवाया हमने, प्रतिमा विराजमान कराई हमने, पंच कल्याण कराए हमने, प्रवचन किए भी हमने, कराए भी हमने, सुने भी हमने, हमारे ही नहीं तीर्थंकरों के भी सुने हैं, बड़े बड़े ज्ञानी धर्मात्माओं के सुने हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो है ना आमने सामने, अपना कसूर नहीं है भाई बिल्कुल भी, अपन क्या करें, ये है ही आमने सामने, तो इधर से बाकी जाती है बात और सामने से निकल जाती है, तो मैं क्या करूं? थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि किया हमने थोड़ा बहुत पुरुषार्थ, और फिर क्या हुआ कि इधर से सामने नहीं जाने दी, तो सामने नहीं जाकर के क्या हुआ कि यहां से निकल गई, बीच में से जवान से निकल गई, यहाँ हमने कोई कहानी सुनी और घर जाकर के किसी को सुना दी, यहाँ हम भी हंस लिए थे और घर वाले भी सब जाकर के हंस लिए कि यार गजब बात सुनाई, दोस्तों के चार दोस्तों के बीच में बैठ करके हमने वो प्रसंग सुनाया और सब हंसी का ठहाका, मजा आ गया, क्या सुनाते हो आप प्रसंग, कहाँ से लेकर के आते हो, क्या हुआ? यहाँ से सुनी और यहाँ से निकल गई, अंदर नहीं उतरी। ये अंदर उतरनी चाहिए, ये बातें अंदर उतारने के लिए बहुत अपूर्व बातें हैं। ये साधारण बात नहीं है, ये कोई गहराई से निकली हुई बात है। राग को बंध का कारण कहना, राग को दुख का कारण कहना, पुण्याश्रम को भी पापाश्रम के समान कह देना, ये कहने के अंदर बहुत वजन चाहिए, बहुत ताकत चाहिए, ये कहने के अंदर हिम्मत नहीं है ये बात कहने की कि आप शास्त्र स्वाध्याय करते हो ये धर्म नहीं है, कह करके देख लो किसी को, अभी आपको कह करके देखूं, अभी सामूहिक कह रहा हूं ना, व्यक्तिगत किसी को कह करके देखो तो कहेंगे बड़ा आया हमें रोकने वाला, इतना धर्म तो करते हैं हम, अपने आप को धर्मात्मा मानने का भ्रम हो रहा है। धर्म कोई अपूर्व चीज है, धर्म अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है, धर्म अंदर से होता है। वीतरागता का नाम धर्म है, राग के चले जाने का नाम धर्म है, ये धर्म वीतरागी धर्म है, यहाँ राग को कोई स्थान नहीं है, राग से गाने को भी कोई स्थान नहीं, भक्ति को भी कोई स्थान नहीं है, पूजन को भी कोई स्थान नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, ज्ञानी धर्मात्मा जीव जब भक्ति करते हैं तो उनकी भक्ति सच्ची भक्ति होती है। भक्ति को हेय कहते हैं और सच्ची भक्ति उन्हीं के जीवन में दिखाई देती है। वितरागियों की भक्ति वे कर सकते हैं जिन्होंने राग को अपनी परिणति में हे समझा हो। इसलिए भैया इस राग को हे जानो, वितरागता को अपनाओ, आश्रम को बंध का कारण जानो, दुख का मूल कारण क्या है इसके बारे में गहराई से चिंतन करो। आपके पास में टाइम है लगभग 22.5 घंटे अभी से लेकर, इतने समय में जब जब आपको तकलीफ लगे, जहां जहां आपको पीड़ा हो, जहां दुख हो, वहां आप विचार करना कि ये दुख का मूल कारण क्या है। मैं गारंटी देता हूं आपका निर्णय वहीं तक पहुंचेगा कि मेरा ही मोह मेरे दुख का कारण है, मेरा ही राग मेरे दुख का कारण है। आप निश्चित तौर पर वहां पहुंचेंगे। इसलिए इन सब बातों के बारे में विचार करते हुए आप इस निर्णय पर पहुंचे और अपने उस राग भाव, कषाय भाव, मोह भाव, तन्मयता उसे दूर करने की चेष्टा करें। हम सभी उससे मुक्त हों, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करें, निज को निज जाने, अल्पकाल में मुक्ति की प्राप्ति करें, परम सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अभी की बात को यही विराम देता हूँ।
बिना काम्यो दुख अनंत समझाव्यूते पदनम श्री सद्गुरु भगवंत जैनी दशा वरते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित।